ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, आप लोग जानते हो कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है? 18 अक्टूबर से। तो आज है 14, 4 दिन बाद। तो बहुत उसका महत्व है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो ये जो कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है 18 तारीख से, तो ये आखिरी महीना है चतुर्मास्य का। चतुर्मास्य में श्रावण से शुरू होता है। श्रावण भादो दामोदर लीला भी हुई थी, और उनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो कौन है? राधा रानी। राधा रानी हर जो महीना है उसके कोई अधिष्ठात्री देवी देवता होता है। तो दामोदर महीने की जो अधिष्ठात्री है वो है राधा रानी, कृतिका। उनका नाम कृतिका भी है, उसी से कार्तिक का महीना इसीलिए कहते हैं, ये कार्तिक का महीना है। तो कार्तिक के महीने की महिमा जो है वो शास्त्रों में गाई हुई है, बहुत पुराणों में शास्त्रों में बहुत महिमा गाई है। जो भगवान है वो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, और भी भुक्ति भोग की चीजें प्रदान कर देते हैं, सब चीजें प्रदान कर देते हैं, लेकिन जो भक्ति है वो इतनी आसानी से नहीं देते। जो भगवान की भक्ति है, भगवान कृष्ण की जो भक्ति हम कामना करते हैं कि भगवान अपनी भक्ति दो, प्रेमा भक्ति दो, तो वो इतनी आसानी से नहीं देते। उसका क्या कारण है? भक्ति क्यों नहीं देते? बाकी चीजें बहुत आसानी से दे देते हैं। भक्ति इसलिए नहीं देते क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान को भी आकर्षित करने वाली है। भक्ति का क्या एक गुण है कि वो कृष्ण को, भगवान को भी आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो एक तरह से भगवान जो है भक्त के सामने बिक जाते हैं, भक्त के इशारों पे नाचते हैं। फिर वो है ना, जैसे यशोदा माता है, बांध लेती हैं उनको, है गोपियां नचाती हैं उनको, वो नाचते हैं। तो इसलिए भगवान जो है भक्ति जो है इतनी आसानी से नहीं देते, बहुत सोच विचार के किसी को भक्ति देते हैं, बहुत सोच विचार के। इसलिए कहा है भगवद गीता में, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जो है मेरी शरण में आता है और ये जान जाता है कि भगवान ही सब कुछ है। तो ये बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन जो ये कार्तिक का महीना है इसमें अगर हम भक्ति करते हैं, कोई साधारण भक्त है, बिल्कुल साधारण है, जो भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहा, भक्ति के लिए वो गंभीर नहीं है, लेकिन कार्तिक के महीने में अगर वो गंभीर हो जाता है सिर्फ एक महीने में, तो भगवान जो है उसको भक्ति दे देते हैं। ये है महिमा कार्तिक के महीने की। इसीलिए कार्तिक के महीने में लोग, आप जानते हैं कि तपस्या उठाते हैं, कार्तिक के महीने में लोग वृंदावन जाते हैं, कई लोग तो ब्रिज में ही रहते हैं पूरा एक महीना। अभी आप अगर ब्रिज में रहना चाहोगे वृंदावन में, तो आपको कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कहां कहां से लोग आते हैं ब्रिज में रहने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो प्रभुपाद जी के मंदिर है वो भी वृंदावन के समान है। तो अगर हम मंदिर में आते हैं और भक्ति करते हैं कार्तिक के महीने में, तो हमें प्रेमा भक्ति मिल सकती है। ये कार्तिक का महिमा है। तो इसीलिए कार्तिक के महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन, जो नवदा भक्ति है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रवण और कीर्तन। ज्यादा से ज्यादा हमें श्रवण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए। और पुराणों में कई कथाएं भी हैं कार्तिक के महात्म्य की। जैसे भागवतम में भी जब सुत गोस्वामी पूछ रहे हैं, सुत गोस्वामी से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, तो सुत गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं जैमिनी ऋषि का। जैमिनी ऋषि और विश्वपायन ऋषि जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं और उनको एक कथा सुना रहे हैं। वो क्या कथा सुना रहे हैं? एक चूहे की कथा है। चूहा, एक चूहा था और वो भगवान राधा कृष्ण के ऑल्टर में घुस गया। वहां जब गया तो उसने देखा कि जो भगवान की दीप है, जो भगवान को दीप चढ़ाया है, वो बुझने वाला है। तो उसको तो लगा कि शायद ये जो घी है कुछ खाने का है, बटर है। तो उसने क्या किया, उसमें ऐसे जैसे अपना मुंह मारा तो वो क्या हुआ, वो जोत जो बुझने वाली थी वो जल गई, जो बुझने ही वाली थी वो जोत जल गई। और इस तरह से करके वो बाहर गया। बाहर गया तो बाहर एक सांप था, सांप ने उसको ढसा और वो मर गया। लेकिन क्योंकि कार्तिक का महीना था, ये कार्तिक का महीना था, और भगवान ने उसको इस तरह से लिया कि इसने मुझे दीप अर्पण कर दिया है, तो उसको वैकुंठ धाम मिला। देखिए, और वैकुंठ गया चूहा। तो इस तरह की कथा जो है सनातन गोस्वामी भी वर्णन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बदल है। तो तो ये क्योंकि कई पुराणों में कई तरह से कथाएं दी हुई हैं। उसमें जैसे कथा है कि वो चूहा जो है वो जब जाता है ऑल्टर पे भगवान के राधा कृष्ण के सामने, तो वो जब देखता है दीप को, तो उसमें जब अपना मुंह लगाता है तो वो रुई है उसके दांतों में फंस जाती है। दांतों में फंसने के कारण जो है वो उसको निकालना चाहता है, तो वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे लग रहा होता है कि वो जैसे नृत्य कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है वो, तो निकालना चाह रहा है ना उसको, दांतों में अटक जाती है वो। और फिर बाद में क्या होता है कि उसकी बाल होते हैं, बाल की मूछें सी होती हैं चूहे की, वो बाल जल जाते हैं और वो खुद भी जल जाता है। और इसके कारण भगवान ये लेते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस जीवात्मा ने मेरे सामने नृत्य किया और कार्तिक का महीना है, इसने मुझे दीप अर्पण किया, इसलिए उसको वैकुंठ धाम मिलता है। तो कार्तिक की बहुत महिमा है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ये दीपदान, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखो जो लोग पिछले कार्तिक में भी आए थे, तो कैसे जो है सब लोग जो है दिए लेकर और भगवान के आगे जो है बहुत भक्ति भाव से, प्रेम से जब ऐसे दिया दिखाते हैं, हजारों हजारों लोग वृंदावन में, तो हजारों हजारों लोग होते हैं, हमारे मंदिर में भी सैकड़ों लोग होते हैं शाम को, और पीछे से जो है वो दामोदर अष्टकम बजरा होता है, गा रहे होते हैं लोग, तो कितना सुंदर दृश्य लगता है, कितना सुंदर, कितना अच्छा वातावरण हो जाता है। तो ये दीप दान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी चीजों में। तो इसलिए आप लोगों को ये जो 30 दिन है इसमें एक दिन भी दीप दान मिस नहीं करना आपको। ये आप जरूर संकल्प कीजिए कि एक दिन भी दीप दान हम मिस नहीं करेंगे। अगर मान लो आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है बाहर, तो आप दीप लेके जाइए साथ में, और साथ में जो भगवान की वो दामोदर लीला की फोटोग्राफ है वो लेके जाइए और वो दीप अर्पण करिए। आप एक दिन भी आप मिस नहीं करिएगा, इसका बहुत लाभ होता है। अभी कोई पूछ सकता है कि देखो अभी तो चूहा जो है वो तो भगवान के धाम वैकुंठ चला गया, हम तो कितने कार्तिकों से, कितने कार्तिक बीत गए, हम तो दीप दान कर रहे हैं, हम तो कहीं भी नहीं पहुंचे अभी। तो ऐसा नहीं है, ये अतियुक्त जैसे कहते हैं अतियुक्ति नहीं है ये, है ना, बहुत ज्यादा नहीं कि बड़ा चढ़ा करके ये बात कही गई है, ये सच बात है, ये सच्ची घटना है। और हाँ, हम भी भगवान के धाम जाएंगे, जो लोग भी ये कर रहे हैं सब, कभी भी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि ये जो चीज है ये इसका लाभ है सिर्फ भगवान को दीप दान करना कार्तिक के महीने में, क्योंकि राधा रानी जो है बहुत करुणामयी है, राधा रानी जो है बहुत करुणामयी है। तो इस महीने में, उनके महीने में जब भगवान दामोदर को जो दीप दिखाता है तो राधा रानी बहुत खुश होती है। और ऑफ कोर्स हमें कार्तिक में कुछ व्रत भी लेना चाहिए अपने हिसाब से, कार्तिक व्रत जरूर लेना चाहिए हमें, कार्तिक व्रत। हम तो हालांकि जो इस्कॉन में जो कहते हैं कि भी जो अलग अलग महीनों में अलग चीजें छोड़ते हैं, तो कार्तिक में हम उड़द की दाल नहीं लेते, उड़द की दाल से परहेज करते हैं सब लोग, लेकिन इससे आगे भी हमें कुछ व्रत लेना चाहिए कि हम माला ज्यादा करेंगे, या लोग जो सुबह नहीं उठते उनको ये व्रत लेना चाहिए कि सुबह उठेंगे। जो भी व्रत आप निभा सको, ऐसा नहीं कि आप ये व्रत ले लो कि हम 64 माला करेंगे रोज और आप एक या दो दिन करो फिर तीसरे दिन कर ही नहीं पाओ ना, तो ऐसा कोई व्रत हमें लेना चाहिए जो संभव हो। अगर जैसे हम 16 माला रोज करते हैं तो, और उसमें भी हमें इतनी आसानी, उसमें भी दिक्कत होती है, तो 64 माला कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह से वो व्रत लें जो पॉसिबल है, जो संभव है, थोड़ा सा हमारे से जो हम कर रहे हैं उससे ज्यादा तपस्या हो, या कोई अपनी जो बहुत अच्छी चीज है, जो आपकी प्रिय वस्तु है, वो छोड़ सकते हैं हम इस महीने में, है ना, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है वो को हम भगवान के लिए हम ये छोड़ रहे हैं। इस तरह से भगवान को खुश करने के लिए, राधा रानी को खुश करने के लिए हम कोई व्रत लेना चाहिए, ऊर्जा, ऊर्जा व्रत, उसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा मतलब ऊर्जा, शक्ति, शक्ति मिलेगी इससे आपको बहुत, और भक्ति में बहुत प्रगति होगी आपकी। कई तरह के व्रत हैं, कई लोग व्रत लेते हैं कि इस महीने में हम जमीन पे सोएंगे, हम बेड पे नहीं सोएंगे, जमीन पे ही सोएंगे सारा महीना। कई लोग कुछ छोड़ देते हैं कि हाँ हम दूध नहीं पिएंगे, या किसी तरह से आप सोच सकते हो व्रत, ये आपके ऊपर है। और वो व्रत जब आप लो तो आप किसी को बताओ मत, ये भी ध्यान रखिए। जब हम कोई संकल्प करें तो हमारा और वो भगवान के बीच में होना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। एडवर्टाइज करने से उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है। अपने अपने अंदर रखिए जो आपने व्रत रखा है, किसी को बताओ नहीं आप, क्योंकि आप भगवान को खुश करने के लिए वो व्रत ले रहे हो, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। तो इस तरह से हमें व्रत लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के त्योहार भी आते हैं। कार्तिक का महीना एक तरह से त्योहारों का महीना भी है, नहीं, दिवाली आएगी इस महीने में, गोवर्धन पूजा आएगी इस महीने में ही, फिर बहुलाष्टमी, राधा कुंड स्नान आएगा, गोपाष्टमी आएगी, बहुत सारे त्योहार आते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम ज्यादा नहीं तो कम से कम हम जो ये त्योहार है उन दिनों में ब्रिज में जाएं, वृंदावन जाएं, हैं, गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, इस तरह से ब्रिज में जाना चाहिए हमें। क्योंकि कहते हैं कि शास्त्रों का ही ये वर्णन है कि अगर आप प्रयागराज की आप प्रयाग तीर्थ जो है उसकी पूजा माघ में होती है, माघ का महीना प्रयाग की पूजा के लिए, और वैशाख में गंगा जी की पूजा करते हैं, और जो कार्तिक का महीना है ये ब्रिज की पूजा के लिए है, ब्रिज वृंदावन की पूजा जो है उसके लिए कार्तिक का महीना है, क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी भी राधा रानी है ना, वृंदावनेश्वरी कौन है, राधा रानी है, तो इसलिए जो कार्तिक का महीना है वो ब्रिज की पूजा के लिए है। तो जब मौका लगे आपको इस महीने में जरूर ब्रिज में वास करना चाहिए, मथुरा में ब्रिज में वास करना चाहिए, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन जितना प्रैक्टिकल है, अगर कोई सारा महीना कर सके, जैसे आपको पता है इस महीने में हमारे ब्रिज मंडल परिक्रमा भी होती है, सारे ब्रिज की परिक्रमा करते हैं, पैदल करते हैं लोग और वहीं रहते हैं, बहुत बड़ी तपस्या है। हम शहरी लोगों के लिए खास तौर से है, जिनको नलके में पानी आ जाता है, वहां जाएंगे तो आपको हैंडपंप से पानी लेना पड़ेगा है, और ये नहीं है कि घर में ही अटैच्ड बाथरूम है आपका, टॉयलेट है बाथरूम है, आपको जंगल में जाना पड़ेगा टॉयलेट करने के लिए और पानी लेके जाना पड़ेगा साथ, तो इस तरह से, और फिर टेंटों में रहना पड़ेगा आपको जमीन पे, तो ये बहुत हैवी तपस्या है। अगर ये इस तरह से हम हर एक 12 वन है, 12 वनों में घूमते हैं ब्रिज में, हर साल कार्तिक का महीने में जो हमारे इस्कॉन है ये परिक्रमा करता है ब्रिज की, तो अभी तो 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली भी मना चुके हैं हम लोग, 25 साल से भी ज्यादा हो गए ये करते हुए परिक्रमा, तो किसी का अगर मौका लगे, अगर आप एक महीना नहीं जा सकते कुछ दिनों के लिए जाओ आप, क्योंकि इस तरह से आपको ब्रिज देखने को भी मिलेगा और ब्रिजवास भी मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा आपको, क्योंकि भक्तों के संग में जब हम ये ब्रिजवास करते हैं तो उसकी महिमा ही और है। ऐसे तो कई लोग हैं जो जाते हैं और वृंदावन में उन्होंने अपना एक फ्लैट ले रखा है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, गीजर भी है, सब कुछ है, एयर कंडीशनर भी लगाया हुआ है उन्होंने, तो वो वहां जाके रहते हैं, तो उसको हम ब्रिजवास नहीं कहते, वो तो यही सारी लग्जरीज के साथ वास कर रहे हैं। तो ब्रिज में जब जाए तो हमें हमारा भाव तपस्या का होना चाहिए, जैसे गोस्वामियों ने किया ब्रिज में वास। गोस्वामियों के बारे में जानते हैं आप? गोस्वामी जितने भी 6 गोस्वामी हैं सब बहुत बड़े बड़े घरों से थे, बहुत अमीर और एरिस्टोक्रेट रॉयल फैमिलीज से थे, वो परिवारों से थे, लेकिन जब ब्रिज में गए तो हर एक दिन वो एक पेड़ के नीचे रहते थे, एक पेड़ के नीचे भी रोज नहीं रहते थे, हर एक पेड़ मतलब जो है वृक्ष के नीचे फिर बदलते थे वो। तो इस तरह से कार्तिक में ब्रिज की बहुत महिमा है, इसी कारण से लोग ब्रिज में जाते हैं, और यही है कार्तिक का जो महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, बहुत हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला है। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि अगर मान लो कोई कार्तिक का महीना आता है और कार्तिक के महीने में वो कोई तपस्या नहीं उठाता तो वो ऐसा ही है कि जैसे किसी को चिंतामणि मिले। चिंतामणि समझते हैं आप? चिंतामणि जो होता है वो पत्थर जो होता है वो लोहे को भी सोना कर देता है, मतलब कोई भी आपकी इच्छा पूरी कर देता है, चिंतामणि का मतलब ये है। तो आपको चिंतामणि मिली और आपने क्या किया? उसको फेंक दिया, मिलते ही फेंक दिया उसको। तो इसी तरह से है, अगर कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने को आपने कोई व्रत नहीं किया, कार्तिक के महीने में आप दीपदान नहीं किया, कार्तिक के महीने में आपने कुछ नहीं किया, तो समझ लो आपने चिंतामणि आपको मिला और आपने फेंक दिया। ये शास्त्रों की वाणी है, इतना महत्वपूर्ण है कार्तिक का महीना, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये शुरू किया दीपदान। जो भी व्यक्ति मंदिर में आता है उसको दीप यहाँ, उसको घर से नहीं लाना पड़ता, मंदिर से ही उसको दीप दिया जाता है, बस आप आओ मंदिर से दीप लो और भगवान को दिखा दीजिए, सिंपल कार्य है ये। लेकिन जो ये कार्य रोज रोज करता है उसको कितना लाभ मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। ये प्रभुपाद जी की महिमा है, प्रभुपाद जी की दूरदर्शिता है, और हमारे भी भक्त कई हैं जो ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे कि लोगों के घरों में जाकर वो दीपदान करेंगे, है ना? ऐसा होता है ना, हर साल ऐसे करते हैं, अभी पता नहीं प्रोग्राम है कि नहीं, इस बार भी है क्या, है ना? आप लोगों के उनको फोन करते हैं कि आज हम आपके घर में आएंगे और दीपदान का प्रोग्राम होगा, और फिर वो अड़ोसियों पड़ोसियों को सब बुला लेते हैं, तो सबको लाभ मिलता है। सिर्फ कार्तिक के महीने में भगवान को ये दीपदान करना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगता है ये बहुत सिंपल सी बात है लेकिन इसका बहुत दूर इफेक्ट होता है। जैसे अगर आप कोई बड़े से बड़ा भी अगर मशीन या रॉकेट जैसे मान लो रॉकेट चंद्रमा पे भी आपने लॉन्च करना हो तो सिर्फ एक बटन ही तो दबाते हो बस, नहीं? जैसे एक बच्चा था जैसे, तो क्या हुआ कि उसके पापा को टाइम मिला बहुत दिनों बाद, वैसे टाइम ही नहीं मिलता था बच्चे को देखने का, बच्चों से बात करने का, तो बहुत दिनों बाद उसको टाइम मिला, तो उसने बच्चे की किताब ली और उसके क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। अब वो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था, जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहा था वो जवाब ही नहीं दे रहा था। उसने एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये बताओ बेटा, अगर अगर 10 आदमी एक काम को 1 घंटे में करते हैं तो बेटा 20 आदमी वो काम को कितने देर में करेंगे? उसको आता ही नहीं था। तो उन्होंने उसको समझाया, देखो बेटा जब आदमी डबल हो जाते हैं तो काम जो है आधे में खत्म हो जाता है वो, तो 20 आदमी उसको आधे घंटे में करेंगे। तो फिर वो कहता है, अच्छा ये बताओ कि 40 आदमी कितने में करेंगे? तो वो बता देता है, क्योंकि उसके पिताजी ने बताया था कि वो जो है 15 मिनट में कर देंगे। तो फिर कहता है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो फिर कहता है, अच्छा 80 आदमी उसको कितने देर में करेंगे? तो कहता है, वो उसका भी जो आधा है ऐसे बोल देता है उसके आधा। फिर वो पूछता है, अच्छा पिताजी आप बताओ कि अगर 3000 आदमी होंगे तो फिर काम कितनी देर में खत्म होगा? वो परेशान हो जाता, वो कहता है काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो फिर बाद में वो बच्चा कहता है, पिताजी आपको कुछ पता तो है नहीं, ये जो किताब आपने उठाई है ये तो भैया की है, मैं तो दूसरी क्लास में हूँ, ये तो चौथी क्लास की किताब आप मुझे पढ़ा रहे हो, मुझे कैसे आएगा? ये पिताजी का हाल है, उसको पता ही नहीं कौन सी क्लास में पढ़ता है, इतने बिजी है। फिर कहता है, अच्छा पिताजी मैं पूछूं आपसे प्रश्न? वो कहता है, आप पूछो। कहता है, पिताजी ये बताओ ये पंखा कैसे चलता है? ये पंखा चल रहा है, ये कैसे चलता है पंखा? वो कहता है कि मुझे क्या पता, मैं कोई साइंटिस्ट हूं, मैं कोई वैज्ञानिक हूं, मुझे क्या पता पंखा कैसे चलता है? कहते है, मैं बताऊं पिताजी? कहता है, बताओ। कहते है, पिताजी बटन दबाने से पंखा चल पड़ता है। तो इतना ही आसान है ये? हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, सिर्फ भगवान को दीप दिला दिखा दें और ये, इतना ही आसान है ये? जैसे एक बटन दबाने से कार्य हो जाता है, पंखा चल जाता है, रॉकेट लॉन्च हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ क्योंकि सारा अरेंजमेंट हुआ हुआ है ना। जो रॉकेट लॉन्च करने से पहले बटन दबाते हैं तो उससे पहले सारा अरेंजमेंट किया हुआ है ना। इसी तरह से भगवान ने सब अरेंजमेंट किया हुआ है कार्तिक के महीने में। मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता में सारी प्रकृति कार्य कर रही है, तो इसलिए सारा अरेंजमेंट हुआ हुआ है। इसलिए अगर आप सिर्फ दीपदान करते हो कार्तिक के महीने में उसका लाभ होता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत बल दिया और हमारे सारे मंदिरों में, इस्कॉन के सारे मंदिरों में आप कहीं भी जाइए आपको ये मिलेगा। तो कई तरह से दीपदान करते हैं, कई लोग जो है जो शिखर है, शिखर मंदिर का शिखर है वहां पे दीप जलाते हैं, कई लोग आकाश दीप, आकाश दीप समझते हैं, वो काइट सी बना के ना उसमें वो लगा के वो उड़ा देते हैं, वो देवताओं के पास दीप जा रहा है, ऐसा भी कई लोग करते हैं कि लग जमुना जी में दीप बहा देते हैं। तो कई तरह से दीप प्रथा है दीप को ऑफर करने की, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो हमें बताई है वो है कि आप आओ मंदिर में आओ और राधा कृष्ण की मूर्तियों के सामने आप दीप अर्पण करो। तो किसी तरह से भी आप भगवान को ये दीप अर्पण करिए, बहुत महिमा है इसकी। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं कार्तिक के महात्म्य के बारे में, और भी बहुत सारी कथाएं हैं कार्तिक के महिमा की, लेकिन जो जिस्ट वो ये है कि हमें श्रवण और कीर्तन जो है बढ़ाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा इस कार्तिक के महीने में श्रवण और कीर्तन करना है, सुनना है ज्यादा और बताना है लोगों को। और आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि अभी तो समय है बहुत, नहीं कभी भी कर सकते हो आप, कभी भी कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, कोई भी समय करिए, दीप दान करना है रोज आपको। और किसी का प्रश्न? हाँ, इन्हें आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं आप, दामोदर अष्टकम आप आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, आप सुबह दामोदर अष्टकम या कभी भी जो भी आप समय मिले दामोदर अष्टकम पढ़ लीजिए और फिर दीपदान जब आपको समय मिले दीपदान करिए। जैसे हमारे मंदिर में सुबह दामोदर अष्टकम होता है, दीपदान नहीं होता, हमारे मंदिर में सुबह सुबह मंगल आरती के बाद दामोदर अष्टकम होता है कार्तिक के महीने में, शाम को भी होता है सुबह भी होता है, लेकिन दीपदान शाम को ही होता है। और क्यों नहीं करवा सकते, करवा सकते हो, कीर्तन कर सकते हैं जैसे हमारे भक्त लोग करते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं आप कि आप रोज जो है अपने घर में अगर आप कर सको तो रोज आप दीपदान करो, रोज कुछ दिए रखो आप 10, 12, 15 जितने लोग आ सकते हैं, और अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाओ और उनसे दीपदान करो। हमारे भक्त ऐसे तो करते हैं, हर दिन किसी के घर में जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाओ और आज हम दीपदान करेंगे, बहुत अच्छा है ये। यस, और नहीं 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 मैंने बताया आपके आने से पहले, आप थोड़ा सा लेट आए,
सॉरी।
ये कृतिका, ये राधा रानी के नाम के ऊपर है, ये राधा रानी है, इसकी जो अधिष्ठात्री है वो राधा रानी है, राधा रानी का नाम कृतिका भी है ना, तो इसलिए कार्तिक इनका नाम राधा रानी के नाम के ऊपर है। ये दामोदर मास कहते हैं इसको, लेकिन यस, क्योंकि इनकी अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है तो कार्तिक भी कहते हैं। इनकी हर एक मास का कोई ना कोई देवी देवता है, 12 मास में हर एक मास का कोई देवी देवता है, जो अधिष्ठात्री होती है उसका वो उस महीने का वो देवता होता है। और
दीप क्या
थोड़ा सा यहाँ आगे रखिए आगे। हाँ,
दीप जो हम डेली जब दान करेंगे तो हमें डेली चेंज करना होगा वो जो दिया होता
है। हाँ हाँ गुड। तो कई लोग जैसे हैं वो ऐसे सोचते हैं कि हम लोग जैसे हम पीतल का दिया ले लें, हो सकता है वो भी। आप ये भी कर सकते हो कि आप बहुत सारे मिट्टी के जो दिए होते हैं वो खरीद सकते हो और रोज वो आप यूज करें। अगर नहीं तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हो, उसमें रोज नई बत्ती लगा के उसको रोज मांझ के यूज कर सकते हो, क्योंकि हम जो दान कर रहे हैं वो जो दीप दान कर रहे हैं, मतलब हम प्रकाश है ना, तो वो जो बाती है वो हम वो है दीप दान। तो दोनों ही जो आपको जो फिजिबल लगे, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये घी तेल या कपूर किसका यूज हो सकता है रेगुलर?
बहुत अच्छा। तो बेस्ट तो कहते हैं तिल का तेल यूज करना चाहिए, जो बेस्ट है, दी बेस्ट है, है? लेकिन उसके बाद आप जो भी जैसे सुविधा हो, जैसे हमारे मंदिर में अगर हम तिल का तेल यूज करें तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, तो हमारे मंदिर में तो ऑर्डिनरी तेल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप घर में तिल का तेल ला सकते हैं, मिल सकता है आपको, तो वो यूज करो, बेस्ट है। नहीं तो फिर आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी हो।
कपूर नहीं,
कोई घी या तेल लिक्विड कोई, और बेस्ट है तिल का तेल, अगर आप यूज करो वो प्रिय है, कोशिश करो तो मिलेगा, क्योंकि तिल तो मिलते हैं ना, तिल का तेल भी मिल सकता है अगर आप प्रयास करो तो। हम मुश्किल तो है। हाँ तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा घी इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बात सच है।
हरे कृष्णा प्रभु।
हाँ बोलो
प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि 12 महीनों में हर देवी देवता का किसी न किसी का खास महत्व होता है, आप तो ये बताइए कि श्री कृष्ण भगवान का कौन सा खास वो है? जैसे कार्तिक का तो महीना राधा जी का हुआ।
मार्गशीर्ष जो है भगवान को प्रिय है।
मार्गशीर्ष कौन सा महीना में
अब जो आएगा ये
इसके बाद?
हाँ इसके बाद मार्गशीर्ष आएगा ना।
और गुरुजी मैं पूछना चाहता था कि आप बता रहे हो कि कपूर को यूज नहीं कर सकते, उसका कोई खास महत्व है कि कपूर इसलिए यूज नहीं कर सकते?
मुझे वैसे ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लिक्विड होना चाहिए ना, जैसे घी या तेल, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है।
प्रभु
तो उड़ जाता है वो, तो एक तरह से वो तो उड़ ही जाएगा, इसलिए। लेकिन मुझे पता करना पड़ेगा डिटेल्स में, मैंने कभी सोचा नहीं और कभी इस्तेमाल करते नहीं है कपूर कहीं पे भी, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि कपूर शायद इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे लगता है मुझे, वो पता करना पड़ेगा।
जय श्री कृष्ण।
हाँ केमिकल्स होता है ना। और किसी का ऑपरेशन? बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। इनका ऑपरेशन है कि जैसे आप खुद कर रहे हो, किसी के लिए करो ऐसा, जो आप करोगे आपको भी फायदा होगा। जैसे किसी के लिए आप खा नहीं सकते, आप कितना भी किसी को प्यार करते हो आप उसके लिए खा नहीं सकते, इसी तरह से आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए तो हमें मोटिवेट करना चाहिए, इसमें क्या आ जाता है। हाँ जी।
हरे कृष्ण बाबू जी, आप इसके लिए एक चित्र अपने कमरे में लगा के वहाँ पर कर सकते हैं या मंदिर में चित्र लगाएंगे?
नहीं, कमरे में लगा के कर सकते हो आप,
मंदिर में भी कर सकते हैं अपने,
मंदिर में भी कर सकते हैं। बेस्ट तो ये है कि आप मंदिर में आओ, दी बेस्ट है, है? लेकिन अगर मान लो आपको दूर पड़ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है ना, प्रैक्टिकलिटी भी तो देखनी है, तो फिर आप घर में आप चित्र लगाइए। आप अगर घर में मंदिर है तो मंदिर में लगाइए, वो बेस्ट है। और अगर मान लो उस कारण भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चित्र अपने कमरे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो तो चित्र में भी है, भगवान तो हर जगह विराजमान है ना, हम चित्र में नहीं है लेकिन भगवान तो चित्र में भी है, इसलिए भगवान आपका वो दीप जो है वो ग्रहण करेंगे। राधा रानी का नाम है, देखना पड़ेगा क्या मतलब क्या होता है, देखना पड़ेगा, देखा नहीं मैंने। अच्छा प्रश्न है
प्रभु जी। हाँ। वैष्णवों को जैसे कहा जाता है कि दूसरे डेमी गॉड्स की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो जैसे अभी नवरात्रे आए थे तो नवरात्रों में जैसे व्रत किया जाता है, तो वैष्णवों को क्या नवरात्रों में व्रत और ये अनुष्ठान वगैरह नहीं करने चाहिए देवी के?
नहीं करने चाहिए
व्रत।
हाँ क्यों? क्योंकि जो भगवान है वो खुद भी अपने बता रहे हैं अपने लीला से, जब उन्होंने इंद्र की पूजा खुद ही उन्होंने बंद करवाई, उनके जो माता पिता है इंद्र की पूजा करते आ रहे थे कई, उनके वो जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, उनके कुल में चली आ रही थी इंद्र की पूजा, भगवान ने वो कहा कि नहीं इंद्र की पूजा नहीं करनी, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करने का हमें कोई तुक नहीं है ना, जब हमने भगवान कृष्ण की पूजा शुरू कर दी है। कि उदाहरण के लिए जब आपके पास 1,000 रुपया है तो फिर आपको 2, 3, 4 रुपए 10 रुपए के पीछे क्यों, हम वो तो है ही 1,000 रुपए में, अलग से आपको क्या बटोरने की जरूरत है।
परंतु प्रभु जी आपके घर में जैसे और सदस्य होते हैं वो दूसरे डेमी गॉड्स की पूजा करते हैं, तो आप उनको तो मना नहीं कर सकते?
नहीं बताओ, समझाओ उनको, देखो हमें समझाना तो है ना, अगर आप समझाओगे नहीं तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं। वो देखो सबसे बड़ा प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा यही है कि हम प्रचार नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार ना करना सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा ये नहीं है कि आप किसी का जानवर का वध कर दिया, किसी को मारा। सबसे बड़ी हिंसा ये है कि आप प्रचार नहीं करते, क्योंकि अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो भाव बंधन से छूटेगा कैसे? जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा वो व्यक्ति, तो क्या फायदा? कितनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं हम। असली तो हमारे असली कष्ट क्या है? असली कष्ट हमारे ये है, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। बाकी कष्ट तो सारे रिलेटिव है, है? असली ये कष्ट यूनिवर्सल है, सबके हैं ये। नहीं तो बाकी जैसे अब देखो डेंगू फीवर है, मान लो अभी डेंगू फीवर फैला हुआ है ना, एपिडेमिक फैला हुआ है, लेकिन आपको पता है कितने खुश हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स के पास जाके देखो कितने खुश हैं वो, उनकी तिजोरियां बढ़ रही हैं, वो बड़े खुश हैं। वो नहीं कह रहे कि डेंगू ना फैले, या वो नहीं चाह रहे। जैसे बरसात हुई थी, छाते वाले इतने खुश थे क्योंकि उनके छाते इस बार जितने बिके हैं कभी बिके ही नहीं उनके छाते। वो तो भगवान का धन्यवाद, भगवान बहुत शुक्र, भगवान तू बड़ा कृपालु है, देख कितनी बरसात की तूने, बहुत अच्छा किया, इतने सालों से कभी छाते ही नहीं बिखे हमारे। तो इस संसार में जो हम दुख कह रहे हैं जिसे, वो किसी का सुख है, आपका दुख है, किसी का सुख है। लेकिन ये जो दुख हम बता रहे हैं, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सबके लिए है। आपके लिए भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, सबके लिए है। अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, सबके लिए बराबर है। तो ये है असली दुख। तो इसके लिए अगर आप दूसरे को कोई प्रयास नहीं कर रहे कि इस चक्कर से निकले, तो हिंसा ही हो गई ना, वो दुखों में पड़ा ही रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम उनको हम सिखाएं प्यार से, जैसे भी, मतलब हमें दृढ़ रहना चाहिए इसके लिए, हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए हमें। बताएंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे ना, अब बताएंगे ही नहीं तो फिर वो तो आपके, अगर आप मौन हो गए तो आपने स्वीकृति दे दी, है ना। मौन रहने का मतलब है कि स्वीकृति नहीं, कहते ना कि अगर कि कोई मौन रह गया तो उसने आधी हां कर दी, सच बात है नहीं? तो आपने आधी हां तो कर दी उनके, तो कम से कम बोलो तो सही कि भाई ये गलत है। वो माने नहीं माने वो फिर अलग बात है, वो आगे की बात है। आप अपना सच तो बताओ, आपको कि आप ही बताने वाले, और कौन बताएगा उनको। और
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि हम अपनी कोई फेवरेट चीज को त्याग करके भी व्रत ले सकते हैं, तो उसका क्या महत्व है, उससे कैसे कृष्ण प्रसन्न?
कृष्ण प्रसन्न होंगे ना, ये तो प्रेम का लक्षण है। आप प्रेम में, ये तो तपस्या है ना, प्रेम में तपस्या कर। जैसे माँ थी, अब हमारे प्रभुपाद जी की मम्मी थी, माता जी थी रजनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए ये संकल्प करती हूँ कि मेरा बेटा जो है ठीक ठाक रहे, भगवान की कृपा रहे, और मैं हमेशा जो है बाएं हाथ से खाऊंगी। वो बाएं हाथ से नहीं खाती थी, उसका तो दाएं हाथ वाली थी, वो बाएं हाथ से खाऊंगी। जब तक मेरा बेटा मेरे से पूछे ना कि माँ तू बाएं हाथ से क्यों खा रही है, इतना बड़ा हो जाए कि उसको ये नोटिस करे। और वो क्या है, ये तपस्या, ये प्रेम है ना, और क्या है? प्रेम में तपस्या होती है ना, नहीं होती? प्रेम में ये तपस्या कर रहे हैं हम भगवान के लिए कि हमें जो बहुत प्रिय वस्तु है हम भगवान आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये तपस्या है।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रेम में तपस्या जरूरी है।
प्रभु जी जिस तरह हम रोजाना घी की जोत जलाते हैं घर में, तो उसी तरह हम तिल के तेल की भी जला सकते हैं जोत?
क्या क्या क्या?
जिस तरह हम घी की जोत जलाते हैं घर में रोजाना, तो इसी तरह हम तिल के तेल की भी रोजाना जोत जला सकते हैं?
रोजाना ही जलाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। कार्तिक के महीने में उसका महात्म्य है, रोज तो महात्म्य नहीं है।
तो घी की जोत जैसे रोजाना जलाते हैं हम?
हाँ अच्छा, घी की जलानी चाहिए
तो तेल
कार्तिक का, कार्तिक का महिमा जो है, और तिल की महिमा कार्तिक के महीने में है।
अच्छा, रोजाना नहीं जला सकते?
नहीं, जलाओ तो जलाओ, क्योंकि इतनी इजीली अवेलेबल कहाँ है।
ठीक है,
अगर अवेलेबल है तो जला भी सकते हो, किसी तरह से भी जला सकते हो, जो जो प्रैक्टिकल है। नहीं, कार्तिक के महीने में इसकी ज्यादा महिमा है, तिल के तेल की, ये कार्तिक के महीने के लिए। और
हरे कृष्णा प्रभु जी, वो एक दो दिन छूट जाता है मान लो, तो क्या करना चाहिए? इसको रिपीट जैसे दीप जला सकते हैं, क्या करना चाहिए?
हाँ, छूटना क्यों है, उसमें क्या है, ऐसा नहीं है। ये गलत है, लोग जो ऐसे सोचते हैं कि हम अपवित्र हो गए इन दिनों में, हम दीप तो जला सकते हो आप,
या वैसे ही छूट जाए जैसे मान लो कभी कहीं।
अच्छा,
और तो
वैसे नहीं छूटना चाहिए, वही तो हम कह रहे हैं, किसी भी स्थिति में नहीं छूटना चाहिए। अगर आप ये संकल्प करो, क्योंकि ये तो देखो छोटी सी चीज है, क्या है, 30 दिन ही तो है, 30 दिन है सारे साल में, 12 महीनों में 1 महीना ही तो है। आप अगर संकल्प करोगे तो नहीं छूटेगा, क्योंकि उसके लिए मैंने बताया, जैसे आप मान लो मंदिर नहीं आ पाए तो घर में भी आपके पास तस्वीर है, उनके सामने ऐसे दीप दिखा के और बाहर रख दो, आपने वो दीप दान कर दिया, दीप दान हो गया। दीप ऐसे दिखाया थोड़े, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जैसे आपका मन कर रहा है उसको ऐसे करके बाहर रख दो, ये तो इजीली कर सकते हो, कहीं पे भी हो ये तो कर सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। दीप अपने एक डब्बी सी बना लो, उसमें दीप रख लो, और वैसे दीप आप हाथ से भी दिखा सकते हैं, अगर दिया नहीं है मान लो ऐसी कहीं जगह पे, तो उसको जगा के ऐसे हाथ से दिखा के रख दो बाहर, लेकिन मिस नहीं करो, ये मिस नहीं करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिस नहीं करो। 18 तारीख से लेके 17 नवंबर तक अब एक दिन भी मिस नहीं करो, ये संकल्प लो आप। और तो तपस्या लो, लेकिन ये तपस्या जरूर, ये तो सिंपल है, सबसे सिंपल है, हर एक कोई कर सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी अपनी तरफ से आप कोई तपस्या जरूर लो, बहुत फायदा होगा आपको। और है हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, शुद्ध माना गया तिल का तेल, बहुत शुद्ध माना गया। हो गया ओ प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कार्तिक के महीने में अगर हम दीप तो खुद दान करेंगे ही करेंगे, अगर अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी को भी अगर हम दिए और तिल का तेल और बत्ती अगर दान करते हैं कि आज ये कार्तिक के महीने में आप लोग जलाइए अपने घर में, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा।
उससे ज्यादा है कि उनसे जलवाओ, क्योंकि वो
हाँ जी हाँ जी, उनको यही संदेश दिया जाएगा कि आप
ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा है,
हाँ जी
कोई महंगी चीज थोड़ा है, कोई भी कर सकता है, तो उसको करवाओ लगाओ। इसीलिए जैसे हमारे भक्त हैं, हमारे भक्त जाते हैं घरों में तो कहते हैं कि लोगों को बुलाओ अपने घर के, आपके आगे आके वो करें, उसका कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने मान लो दान दिया उसने नहीं किया तो फिर क्या फायदा हुआ, आपने तो दान दे दिया, क्योंकि इतनी कोई महंगी चीज थोड़ा है, कोई भी दीप दान कर, कोई भी दीप जला सकता है, ऐसा थोड़ा कि किसी के घर में इतना सा तेल नहीं होगा। सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी, मैं कह रहा हूं ना, कोई भी दीप जो प्रकाश है वो आप दे रहे हो ना भगवान को, दीप दे रहे हो। वो चूहा था, उसने कोई थोड़ा कोई वो कहीं से घी लाया था, चूहे ने क्या किया था, वो जल रहा था, वो तो उन्होंने जलाया भी नहीं था,
जल रहा था,
वो जल ही रहा था, बस उसमें उसने थोड़ा सा ऐसे किया तो वो प्रकाश ज्यादा हो गया, और उसी को भगवान ने कहा। यही तो है, इस महीने में भगवान जो है बस एक बहाना ढूंढ रहे हैं आपको कृपा देने का, अब ऐसे समझ लो, कार्तिक के महीने में भगवान एक बस बहाना ही ढूंढ रहे हैं आपको कृपा, पूरी कृपा प्रदान करने का, ये है का, इसीलिए चिंतामणि है। इसीलिए इस महीने को कोई इस्तेमाल नहीं करता तो उसके हाथ में चिंतामणि आई और उसने फेंक दी। तो दान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे करवाओ, उसको प्रेरणा दो या करवाओ,
भले कोई एक ही क्यों ना हो,
हाँ जी
कोई एक ही क्यों ना हो जिससे हम पूरा महीने जलवा सके।
हाँ हाँ हाँ, अगर वो सारा महीना नहीं तो कम से कम एक दिन ही चाहे कर दे वो।
नहीं मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जैसे 5-6 बंदों को ना कर पाए तो किसी एक से ही पूरे महीने करवाएं।
हाँ यस यस करो, जैसे जैसे वो चूहा जो था उसने एक ही दिन तो किया कार्तिक में, एक ही दिन तो किया, सारा महीना थोड़ा करता रहा वो, तो आप किसी से एक दिन भी करवा दे। जैसे जाते हैं ना जो भक्त लोग, कितना ये तो कार्य करते हैं भक्त लोग, एक भक्त के घर जाते हैं और अड़ोसियों वो एक ही दिन शायद करते हैं, फिर रोज रोज थोड़ा करते हैं, कहते हैं लोग लेकिन रोज रोज आलस कर जाए, नहीं है उनको इतनी प्रेरणा नहीं है, तो एक दिन का भी उनको फायदा होगा कार्तिक के महीने में, तो लोगों से करवाओ वो ज्यादा फायदेमंद है।
जय श्री कृष्ण प्रभु जी।
मंदिर में अगर आप चाहो तो, क्योंकि मंदिर में रोज रोज ये हो रहा है, तो मंदिर में अगर आप चाहो तो दे सकते हो दीप या तेल या जो भी जो मंदिर में जरूरतें हैं, क्योंकि ये तो सबके लिए यूज हो रहा है, तो वो दे सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। दीप दान का करने का सबसे अच्छा टाइम किस टाइम होना चाहिए प्रभु जी?
अच्छा टाइम तो शाम का ही है, जब अंधेरा हो जाता है तभी अच्छा लगता है, तभी हमारे मंदिरों में भी शाम को होता है, अंधेरे में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, वातावरण भी अच्छा लगता है। आप खुद सोचिए जब अंधेरा है और सब लोग जो है दीप ऐसे भगवान को दिखा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, शाम का समय अंधेरे में अच्छा है। ज्यादातर जो दीपदान होता है ज्यादातर मंदिरों में शाम को ही होता है, वो जो वो आकाश दीप जो करते हैं वो शाम को ही तो करते हैं, वो काइट में कई बार हमने देखा कार्तिक के महीने में कई लोग जो है ऐसा वो होता है गुबुन सा, उसके अंदर कैसे पता नहीं करते हैं वो, हमें पता नहीं, वो उड़ता जाता है उड़ता जाता है उड़ता जाता है, कई बार देखा हमने, आप लोगों ने देखा होगा आकाश दीप, बहुत अच्छा। 9 भी बज गए हैं और बहुत सुंदर, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और बहुत ही प्रैक्टिकल आपने प्रश्न भी पूछे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जो कार्तिक में आप व्रत लो, वो व्रत जो लो आप संकल्प जो करो वो आपका पूरा करें भगवान, और भगवान सत्य संकल्प है, आप भगवान से प्रार्थना करिए जब भी जो संकल्प लीजिए, हे भगवान ये मेरा आप सत्य संकल्प है, आपके सारे संकल्प पूरे होते हैं, आप चाहो तो मेरा ये संकल्प भी पूरा करिए, जरूर कुछ ना कुछ संकल्प लीजिए कार्तिक में, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।